ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नेष्ट। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री वृंदावन धाम में कृष्ण बलराम मंदिर की तरफ से हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। वैष्णवजन, वैष्णवी माता जी, सबके आशीर्वाद की याचना करता हूँ कि श्रीमद्भागवतम के इस श्लोक के ऊपर भगवान गौरंग महाप्रभु शिल प्रभुपाद गुरुदेव की शक्ति से हम कुछ चर्चा करने का प्रयास कर सकें। तो आज का श्लोक है 49वां। यथा अज्ञस्तमसा युक्ता उपासते व्यक्तम एव हि न वेद पूर्वम अपरम नष्ट जन्म स्मृतिस्तथा। यथा जिस तरह अज्ञ मूर्ख जीव तमसा निद्रा में युक्त लगा हुआ उपासते के अनुसार कार्य करता है, व्यक्तम स्वप्न में प्रकट शरीर एव निश्चय ही निसंदेह न वेद नहीं जानता पूर्वम विगत शरीर अपरम अगला शरीर नष्ट नष्ट जन्म स्मृति जन्म लेने का स्मरण तथा उसी प्रकार। अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा, शिल प्रभुपाद की। जिस तरह सोया हुआ व्यक्ति अपने स्वप्न में प्रकट हुए शरीर के अनुसार कार्य करता है और उसे स्वयं मान लेता है, उसी तरह मनुष्य अपने वर्तमान शरीर से अपनी पहचान बनाता है, जिसे उसने अपने विगत धार्मिक या अधार्मिक कार्यों के कारण प्रकट प्राप्त किया है और वह अपने विगत या भावी जीवनों को जान पाने में असमर्थ रहता है। आया अनुवाद, कुछ समझ में आया अनुवाद? जिस तरह सोया हुआ व्यक्ति, जब हम स्वप्न देखते हैं सो करके, तो हम तो सोए रहते हैं, हमारा शरीर सोया रहता है, लेकिन उस स्वप्न में हम कहीं भी उठ के चले जाते हैं, एक दूसरा शरीर, हमारा ही एक दूसरा शरीर आ जाता है स्वप्न में, और उस शरीर से हम विभिन्न प्रकार की क्रियाएं स्वप्न में करते हैं। सोए हुए हैं, ये शरीर सोया हुआ है, लेकिन स्वप्न में एक दूसरा शरीर सामने आ जाता है हमारे, और फिर हम विभिन्न कार्य करते हैं। तो उसी प्रकार मनुष्य अपने इस वर्तमान जीवन को, अपने इस वर्तमान शरीर से अपनी पहचान बना लेता है और अपने विगत जीवनों को भूल जाता है। यानी जब हम स्वप्न देखते हैं, जब हम निद्रा करते हैं, तो हम अपने आप को भूल जाते हैं। स्वप्न ही रहता है, निद्रा में हम सब कुछ भूल जाते हैं। मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है, मेरा परिवार में कौन कौन है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा बैंक बैलेंस, नींद में हम सब कुछ भूल जाते हैं। और एक नया शरीर हमारा उस वक्त जन्म लेता है, जिससे हम अपनी पहचान बना लेते हैं उस स्वप्न वाले शरीर से। और जब स्वप्न हमारा टूटता है तो वो स्वप्न वाला शरीर हम भूल जाते हैं और अपनी पहचान को हम वापस और समझ जाते हैं। ये इस श्लोक का जो है अर्थ है। स्वप्न में जो कार्य हो रहा है उसको भी जीवात्मा देख रहा है, और हमारे इस शरीर में जो कार्य हम कर रहे हैं उसको भी जीवात्मा देख रहा है। जीवात्मा नहीं बदलता। हमारे स्टेजेस, हमारी स्टेजेस बदल जाती हैं। कभी हम निद्रा में हैं, स्वप्न में हैं, तो हम दूसरे शरीर के साथ अपने आप को स्वीकार कर लेते हैं, और जब स्वप्न टूट जाता है तो हम इस शरीर को अपना मान लेते हैं। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं दोनों ही स्वप्न है, एक रात का स्वप्न और एक दिन का स्वप्न, डे ड्रीम और नाइट ड्रीम। रात के स्वप्न में दिन को भूल जाते हैं और दिन में हम रात के स्वप्न को भूल जाते हैं। दिन का स्वप्न थोड़ा लंबा होता है और रात का सपना छोटा होता है, इतना ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। तो यहां बताया जा रहा है कि जिस तरह सोया हुआ व्यक्ति अपने स्वप्न में प्रकट हुए शरीर के अनुसार कार्य करता है और उसे स्वयं मान लेता है ना, होता है ऐसा सबके साथ, लगता है ऐसा कभी? स्वप्न तो सबको आता होगा हाँ, और उसे स्वयं मान लेता है। उसी तरह मनुष्य अपने वर्तमान शरीर से अपनी पहचान बना लेता है, जिसे उसने अपने विगत, और ये शरीर कैसे प्राप्त हुआ, हमारे पूर्व जन्मों के धार्मिक या अधार्मिक कार्य, धार्मिक अधार्मिक का मतलब पुण्य कर्मों या पाप कर्मों के कारण हमें जैसे भी करके शरीर ये प्राप्त हो गया जो इस वक्त हमारे पास है, और वह अपने विगत जीवन को और भावी जीवन को नहीं जानता। कौन से जीवन में उसने कौन सा कार्य किया, ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया या ऐसा कौन सा पाप कार्य किया कि उसको आज ये स्थिति प्राप्त हुई है, ऐसा शरीर प्राप्त हुआ है, उसको ऐसी स्थिति प्राप्त हुई है, ऐसी मनोदशा प्राप्त हुई है। तो अनेक प्रकार से जीव जो है सिर्फ अपने भौतिक जो वर्तमान में उसका शरीर है उसी से अपना संबंध जोड़ लेता है। तो अब तात्पर्य में चलते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद कहते हैं मनुष्य पाप कर्मों में इसलिए प्रवृत्त होता है क्योंकि वह स्वप्न पाप कर्मों में इसलिए प्रवृत्त होता है क्योंकि वह यह नहीं जानता कि उसने अपने वर्तमान बद्ध शरीर को प्राप्त करने के लिए विगत जीवन में क्या किया था। जो तीन प्रकार के कष्टों से प्रभावित होता रहता है, तो यह शरीर हमारा तीन प्रकार के कष्टों से प्रभावित होता रहता है। कौन कौन से कष्ट हैं? आदि आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। श्रीमद् भागवतम में ऋषभदेव कहते हैं नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्मा, इंद्रिय तृप्ति के पीछे पागल रहने वाला मनुष्य पाप करने में कोई संकोच नहीं करता। यत इंद्रिय प्रीतय आपनोति, वह एकमात्र इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, न साधु मन्ये, ये अच्छी बात नहीं है। यत आत्मनोयम असनपि कलेशत आसदेह, ऐसे पाप कर्मों के कारण मनुष्य को दूसरा शरीर प्राप्त होता है जिसमें उसे कष्ट भोगना होता है। जिस तरह अपने विगत पाप कर्मों के कारण वह वर्तमान शरीर में कष्ट पाता है, यह समझ लेना होगा कि जिस व्यक्ति को वैदिक ज्ञान नहीं है वह अज्ञानवश इस बात को नहीं जानता कि उसने भूतकाल में क्या किया, वर्तमान में क्या कर रहा है और भविष्य में किस तरह कष्ट उठाएगा। वह पूर्णतः अंधकार में रहता है, इसलिए वैदिक आदेश है तमसी मां अंधकार में मत रहो, ज्योतिर्गमा प्रकाश में जाने का प्रयास करो। यह प्रकाश वैदिक ज्ञान है जिसे वह या तो सतोगुण पद पर पहुंचकर समझ सकता है, या जब वह गुरु तथा परमेश्वर की भक्ति में लगे रहने से सतोगुण को लांग जाता है। इसका वर्णन श्वेताश्वत उपनिषद में हुआ है, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्य इते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। जिन महात्माओं को भगवान तथा गुरु दोनों पर पूर्ण श्रद्धा होती है उन्हें वैदिक ज्ञान के सारे आशय स्वतः प्रकट हो जाते हैं। वेदों का आदेश है तद विज्ञानार्थ स गुरुम गुरुम एवं एव अभिगच्छेत। मनुष्य को चाहिए कि वह गुरु के पास जाए जिससे वेदों का पूर्ण ज्ञान होता है और भगवत भक्त बनने के लिए उसे श्रद्धापूर्वक निर्देशन प्राप्त करे, तब वेदों का ज्ञान प्रकट होगा। वैदिक ज्ञान प्रकट हो जाने पर भौतिक प्रकृति के अंधकार में रहने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अभी शिला प्रभुपाद का यहाँ आधा तात्पर्य पूरा हुआ है, तो अब हम इस आधे तात्पर्य के ऊपर थोड़ा बोलेंगे फिर आगे चलते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर यहाँ पर जो है एक उदाहरण दिया गया है मनुष्य के जीवन की, जो तुलना है स्वप्न से की गई है। तो इसका हम सबको एक्सपीरियंस, हमको सब अनुभव होता है कि किस तरीके से, जिस तरीके से हम स्वप्न देखते हैं और अपने इस जीवन को भूल जाते हैं, हमारा जो अभी वर्तमान का जीवन है, उसी तरीके से हमारा ये जो जन्म है हम विगत जन्म को अपने भूल चुके हैं और इस जन्म के बाद जब हमारा दूसरा जन्म होगा तो हम इस जन्म को भूल जाएंगे, ये हमारा विगत जन्म हो जाएगा। तो ये जो हमारी आज की स्थिति है, जो हमारी वर्तमान स्थिति है, वो चाहे हमारी दुख की स्थिति है या सो कॉल्ड हैप्पीनेस सुख की स्थिति जिसको आप मानते हैं या मान सकते हैं, जो भी स्थिति है वो हमारी विगत जीवन में जो हमने कर्म किए हैं उसके फलस्वरूप हमको प्राप्त हुआ। लेकिन जीव की जो स्थिति है, भगवान ने कहा है कि जीव जो है इस संसार में दुखालयम अशाश्वतम, ये दुख का स्थान है। तो यहाँ सुख की अनुभूति अगर होती भी है किसी को तो वो क्षण भर के लिए होती है, क्षण भंगुर शरीर है और क्षण भंगुर ही हमारे सुख की उपस्थिति रहती है। जीव की यात्रा कब से शुरू हुई, हम कब से भगवान से विलग हुए, हमें कभी कभी चिंतन और मनन कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी हमको ऐसा शरीर प्राप्त हो चुका है जिसमें हम चिंतन और मनन कर सकते हैं। हमें ठाकुर जी की कृपा से मनुष्य देह प्राप्त हो चुकी है जिसमें हम ये चिंतन मनन कर सकते हैं। हमें यह शरीर प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त हुआ, क्या हमारी स्वर्ग लोक से अधोगति हुई, हम स्वर्ग लोक से नीचे गिरे, स्वर्ग लोक के भोग करके आए हैं, या हम नरक लोक भोग करके आए हैं, या हमने क्रमशः 80 लाख योनियों में प्रगति करके मनुष्य जीवन को प्राप्त किया है, कैसे भी करके हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हो गया। तो जब हमारा जन्म होता है, जब हम इस संसार में गिरते हैं, इस संसार में आते हैं, तो सर्वप्रथम हम किसका आश्रय लेते हैं, किसके आश्रय में आते हैं हम, हाँ सर्वप्रथम ये जीव माँ के गर्भ का आश्रय ग्रहण करता है। और जब माँ का ग्रहण जन्म माँ के गर्भ में आता है और ये आशय ग्रहण करता है तो स्थिति को आप जानते हैं समझते हैं कि सातवें महीने में आकर के उसको भूख प्यास सताती है। और अगर कोई पुण्य आत्मा है तो उसको अपने पूर्व जन्मों के 100 जन्मों तक की ठाकुर जी स्मृति करा देते हैं। 100 जन्मों तक की स्मृति उसको माँ के गर्भ में ही हो जाती है और वो अपने पूर्व जन्मों को देखकर रोता है, गिड़गिड़ाता है, ठाकुर जी से प्रार्थना करता है कि मुझको इस कालकोठी से बाहर निकालो, मुझको इस कालकोठी से बाहर निकालो। और फिर उस माँ के गर्भ के आश्रय को वो छोड़ता है और कहाँ आता है, उसको माँ की गोद का आश्रय मिलता है। गर्भ से गोद तक की ये यात्रा उसकी होती है, गोद में आ जाता है और धीरे धीरे माँ का आश्रय लेने के बाद उसे पिता का ज्ञान होने लगता है। हाँ, माँ के अलावा पिता भी है, फिर वो पिता का भी आश्रय लेता है। पिता का आश्रय लेने के बाद जब थोड़ा बड़ा होता है तो फिर गुरुजनों का आश्रय लेता है, स्कूल में जाता है, टीचर्स का आश्रय लेता है। थोड़ा और बड़ा होता है, कुछ समझने लगता है, कमाने लगता है, कहीं कुछ नौकरी करता है, कंपनी का एक आश्रय लेता है, कंपनियों को ज्वाइन करता है, व्यापार करता है तो ग्राहक का आश्रय लेता है। ये आश्रय ठहरता नहीं, विवाह करता है तो पत्नी पति का आश्रय लेती है, पति पत्नी का आश्रय लेता है, बीमार होते हैं तो डॉक्टर का आश्रय लेते हैं, कहीं जाना है तो सवारी का आश्रय लेते हैं, कभी हवाई जहाज में बैठते हैं, जहाज का आश्रय लिया, रेलगाड़ी, कितने आश्रय हम लेते ही रहते हैं, आश्रयों की कोई कमी नहीं। और ये आश्रय बदलते रहते हैं, कभी बेटा या बेटी माँ के आश्रय में आता है तो कभी माँ बेटे के आश्रय में आ जाती है, बेटा अब मैं तेरे आश्रय में हूं, कभी तू मेरे आश्रय में था। तो ये आश्रय हमारे निरंतर बदलते रहते हैं, स्थायी नहीं है, स्थायी नहीं रहते। तो जब गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से हमें पता लग जाता है कि हमारा स्थायी आश्रय कौन है, कौन सा ऐसा आश्रय है जिसको लेने के बाद मुझको आश्रय बदलना ना पड़े, कौन सा ऐसा आश्रय। जब मनुष्य को अपने किसी जीवन में ये बात समझ में आ जाती है कि मुझको लेना आश्रय किसका है, जहां जाने के बाद मेरा आश्रय हमेशा के लिए, जिसके मैं आश्रय में रह सकूं, मैं आश्रय लेते लेते थक गया हूं, मैंने बहुत से आश्रय बदले जीवन में, कभी इसका आश्रय, कभी बेटे का आश्रय, कभी बेटे ने पिता का आश्रय, बदलते रहते हैं। तो भगवान कहते हैं पिता मत्स्य जब तो माता धाता पिता मां, मैं तुम्हारी माता, मैं तुम्हारा पिता, मैं तुम्हारा आश्रय दाता, मैं ही तो हूं, मेरे आश्रय में आ जाओ। मेरे आश्रय में आने के बाद फिर तुम्हें कभी आश्रय बदलना नहीं पड़ेगा, कभी बदलना नहीं पड़ेगा। तो उस बात को कैसे समझा जा सकता है, उस बात को समझने के लिए हमारे इतने पुण्य कर्म होने चाहिए कि हमें मनुष्य देह प्राप्त हो, और मनुष्य देह प्राप्त होने के बाद इतने पुण्य कर्म होने चाहिए कि हमें साधु संग प्राप्त हो। इसीलिए शास्त्रों का ये वचन है ना, यहाँ जैसे प्रभुपाद कहते हैं, इसलिए वैदिक आदेश है तमसी माँ, अंधकार में मत रहो, ज्योतिर्गमा, प्रकाश में जाओ। असतो माँ सदगमया, असत में मत रहो, शाश्वत सत्य की ओर हमको बढ़ना है। तो ये संसार क्या है? ये संसार असत है, ये स्वप्न है। हम स्वप्न में जीते हैं अगर हम ठाकुर जी से अलग हैं। अगर हम कृष्ण के साथ नहीं जुड़े हुए, कृष्ण के साथ अपने संबंध को नहीं जोड़ा हुआ, कृष्ण की सेवा हम नहीं कर रहे, तो हम किस में जी रहे हैं? असत। असत का मतलब क्या होता है? स्वप्न, जो सत्य नहीं है। तो यहां कहा गया है असतो मा सदगमयो, असत में मत रहो, सत्य की ओर बढ़िए, शाश्वत सत्य की ओर बढ़िए। तमसो मा ज्योतिर्गमयो, अंधकार में मत रहो, प्रकाश की तरफ आगे बढ़ो। मृत्युर मा, मृत्युर मा अमृतम गमया, इस मृत्यु को प्राप्त होने वाले भौतिक शरीरों को स्वीकार मत करो, वरन अमर हो जाओ, ये शास्त्र कहता है। भगवान ने कहा भगवद गीता में, जो हमारे को पहली शिक्षा, जो बेसिक बेसिक जो शिक्षा भगवान ने हमारे को दी, भगवान ने हमारे को क्या कहा कि वास्तव में तो हम अमर हैं, हमारी कभी मृत्यु नहीं होती। न जायते मृियते वा कदाचिन, नायम भूतवा भविता वा न भूया, अजो नित्यम शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के मारे जाने पर आप मारे नहीं जाते, भगवान अमर है और हम भी अमर हैं, लेकिन हमने अपनी पहचान शरीर से कर ली है, इसीलिए हमको लगता है कि हमारी मृत्यु होगी। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुव जन्म मृतस्य च, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म निश्चित है। लेकिन जन्म किसका होता है? शरीर का जन्म होता है, आत्मा का जन्म नहीं होता। और भगवान क्या कहते हैं कि आप आत्मा हो, आप आपका जन्म नहीं होता। भगवान अजन्मा है और हम भी अजन्मा हैं, लेकिन दुख की स्थिति यह है, मैं इस संसार में हूं लेकिन मैं इस संसार का नहीं हूं। मैंने इस शरीर का भी आश्रय ले रखा है, ये शरीर का आश्रय भी मैंने लिया हुआ है, लेकिन शरीर का आश्रय लेते समय हम भूल जाते हैं कि हमने शरीर का आश्रय ले रखा है। हम समझ लेते हैं कि हम स्वयं ही शरीर हैं, और ये मूर्खता पूरे संसार में हो रही है, ये मूर्खता पूरे संसार में हो रही है। जिस दिन हमारे को ये समझ में आ जाएगी ये शरीर का मैंने आश्रय ले रखा है, उस दिन हमारा भाग्य बदलना प्रारंभ हो जाएगा। कितने प्रकार की योनियां हैं, क्यों हैं इतने प्रकार की योनियां, कभी सोचना चाहिए। इतने प्रकार की योनियां क्यों हैं, इसके पीछे क्या कारण है? अभी कुछ दिन पहले मैं दिल्ली के चिड़ियाघर में गया था और बच्चों को लेके गया, बच्चों ने कहा कि जू जाना है, जू चलो जू जाते हैं। लेकिन जू जाने के बाद भी जो अनुभूति वहां ठाकुर जी करा रहे थे वो यही हो रही थी कि देखो कैसी कैसी दशा में जीव है, और कौन कौन से, कितनी वैरायटीज, कितनी वैरायटी ठाकुर जी ने, जो हमने कभी जीवन में देखते नहीं, कितनी वैरायटी, क्यों है ये वैरायटी, समझना चाहिए। कितने प्रकार के जीव है ना, 80 लाख प्रकार की योनियां, कौन कौन सी हैं? जलचर नव लक्षाणी, 9 लाख प्रकार की योनियां तो जल में हैं जिसको हम देख ही नहीं पाते, और स्थवरा लक्ष विशंति, 20 लाख प्रकार की योनियां पेड़ पौधे हैं, क्रमयो रुद्र संख्या के, और 11 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े और रेंगने वाले हैं, पक्षी नाम 10 लक्षणाम, 10 लाख प्रकार के पक्षी क्यों हैं, और त्रिशन लक्षाणी पश्वचा, पशु 30 लाख प्रकार के और मनुष्य 4 लाख प्रकार के। तो ये योनियां इतनी क्यों बनाई, क्या जरूरत थी भगवान को इतनी योनियां बनाने की, सबको जन्म देना फिर सबको मारना, इतना बड़ा डिपार्टमेंट क्यों खोला है, क्या कारण है इतना बड़ा डिपार्टमेंट खोलने की, क्या कारण है। तो जिस दिन हमारे को ये बात समझ में आती है कि हम इस शरीर का हमने आश्रय ले रखा है लेकिन हम ये शरीर नहीं है, यमराज ने भी पूछा था युधिष्ठिर महाराज से कि आपको इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या लगता है, कौन सा सबसे बड़ा आश्चर्य है, तो क्या कहा था यमराज जी ने, आनी आनी भूतानी गच्छन्ति अयमालयम् शेष स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम, के प्रतिदिन लाखों जीवात्माएं जा रही हैं शरीर छोड़ के, लाखों करोड़ों जीवात्माएं प्रतिदिन जा रही हैं, लेकिन जो व्यक्ति यहां है वो सोचता है कि मैं तो सदैव रहने वाला हूं, अच्छा वो चला गया, ओहो अच्छा वो चला गया, ओहो, अपने बारे में उसको समझ में नहीं आती कि मेरे ऊपर भी काल मंडरा रहा है। एक बंगला में कहावत है, घूते पोरे गोबर हसे, घूते पोरे गोबर हसे, जब सूखा गोबर जलता है तो गीला गोबर हंसता है, गीला गोबर हंसता है सूखे गोबर को देख के, आ देखो जल रहा है, मूर्ख है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि शाम तक मैं भी सूखने वाला हूं, कल मेरा भी नंबर आएगा जलने का। तो इस प्रकार से हम जिस स्थिति से निकल रहे हैं तो ये स्थिति हमारी स्वप्न की तरह है, अगर हमने अपने आप को कृष्ण भावनामृत में नहीं जोड़ा, स्वप्न है वो, तो दिन का स्वप्न हो चाहे रात का स्वप्न हो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो अब आगे चलते हैं और यहां प्रभुपाद ने कहा है, जिन महात्माओं को भगवान तथा गुरु दोनों पर पूर्ण श्रद्धा होती है उन्हें वैदिक ज्ञान के सारे आशय स्वतः प्रकट हो जाते हैं, यानी भगवान के साथ साथ हमारे को क्या करना है, गुरु का आश्रय भी लेना है, गुरु का और भगवान का आश्रय। तो गुरु और भगवान का आश्रय ऐसे है जैसे रेलगाड़ी दो पटरी पे चलती है, एक पटरी पे नहीं चलती, तो एक पटरी गुरु और एक पटरी भगवान, तो इन दोनों का जब आश्रय ले लेते हैं तब वैदिक ज्ञान के सारे आशय स्वतः प्रकट हो जाते हैं। वेदों का आदेश है तद्विज्ञानार्थ स गुरुम एवाभिगच्छेत, मनुष्य को चाहिए कि वह गुरु के पास जाए जिसे वेदों का ज्ञान पूर्ण ज्ञान होता है। अब जाएं क्यों, क्यों जाएं गुरु के पास, अच्छा हम हॉस्पिटल क्यों जाते हैं, अस्पताल क्यों जाते हैं, किस लिए जाते हैं, हाँ जब हमें यह पता लग जाता है मैं ठीक नहीं हूं तो अस्पताल जाते हैं, जब हमको ये मालूम पड़ जाता है, जब हम इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि मैं रोगी हूं, नाउ आई एम डिसीज्ड, मेरे को रोग हो गया है तो मेरे को कैसे भी करके अस्पताल जाना ही है, चाहे आप मेरे को रोको चाहे कुछ करो मैं मानूंगा नहीं, मैं जाकर के डॉक्टर की शरण मेरे को जाकर के लेनी ही है, अस्पताल जाना ही है। जब हम रोगी होते हैं तो हम अस्पताल जाते हैं और जब हम निरोगी होते हैं तो अस्पताल जाते हैं, जब निरोगी होते हैं तो अस्पताल जाते हैं, नहीं जाते हैं। तो क्या हम निरोगी हैं, निरोगी हम नहीं हैं। जिस दिन हमको ये बात समझ में आ जाएगी कि हम निरोगी नहीं हैं, हमको एक रोग लगा हुआ है, कौन सा रोग, भव रोग, अरे बाबा इस रोग का तो किसी डॉक्टर ने बताया नहीं हमारे को कि ये भी कोई रोग होता है, ये भी कोई रोग है, भव रोग। भव रोग का मतलब कौन सा रोग, जन्म और मृत्यु का रोग। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेशनम। ये जो रोग है, ये जन्म और मृत्यु का रोग, इसको लेकर के अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको क्या बोलेगा, पागल कौन आ गया मेरे पास, ये कौन पागल आ गया। आप जाओ डॉक्टर के पास, आप उसको बोलो मेरे को ये रोग हो गया है, मृत्यु का रोग, मेरे को दवा दो, तो दवा देगा आपको, बाहर भगा देगा, ये पागल कहां से आ गया मेरे पास। लेकिन कौन से डॉक्टर के पास जाना है, कौन से डॉक्टर के पास जाना है, ये हमको समझ आनी चाहिए। तो जो गुरु हैं वो हमारे डॉक्टर हैं, स्पिरिचुअल डॉक्टर, उनके पास अगर हम जाएंगे, उनके पास जाकर के कहेंगे मेरे को ये रोग हो गया है, मृत्यु का रोग, तो गुरु बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। ये सुनते ही प्रसन्न हो जाएंगे, जब आप कहेंगे कि मेरे को ये रोग हो गया है, गुरु समझ जाएंगे कि अब आप किस दशा में, आप प्रकाश की दशा में आगे बढ़ रहे हैं, अंधकार से निकल रहे हैं, प्रकाश की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो कौन से इलाज के लिए कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये निर्णय हमको करना है। और गुरु के पास जाकर के ये नहीं बताना चाहिए कि मेरे को पेट में दर्द हो गया, मेरे को सर में दर्द हो गया, तो कौन सी दवा कौन से डॉक्टर से लेनी है, ये आपको अपनी बुद्धि से कार्य करना होगा। तो आगे चलते हैं प्रभुपाद के तात्पर्य को। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि जीव को प्रकृति के गुणों, सतो रजो तथा तमो गुणों के साथ संसर्ग के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। ये जो विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है, ये जो 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, ये किस प्रकार से प्राप्त होती हैं, गुणों के संपर्क में आने से। प्रभुपाद कहते हैं सतो रजो तथा तमोगुण के संपर्क में आने से ये विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। सत्वात् संजायते ज्ञानम, रजसो लोभ एवच, प्रमाद मोह तमसो भवतो अज्ञानम एवच। जब सत्वगुण का जन्म होता है, सत्वगुण जन्म होता है, तब क्या होता है, तब हमारे को ज्ञान की प्राप्ति होती है, और रजोगुण में हमको लोभ की प्राप्ति होती है, और तमोगुण में हमारे को प्रमाद मोह और अज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इसमें आगे बता रहे हैं, सतोगुण से संसर्ग करने वाले का उदाहरण एक योग्य ब्राह्मण है। ऐसा ब्राह्मण भूत वर्तमान तथा भविष्य को जानता है, क्योंकि वह वैदिक साहित्य की सम्मति लेता है और शास्त्रों को आंखों से देखता है। तो शास्त्रों को देखने की विधि क्या है, आंखों से देखा जाता है शास्त्रों को। वास्तव में हर जीव अज्ञान में उत्पन्न होता है, माया मुक्त जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण। तो जब वेद और पुराण हमको मिलते हैं, साधु शास्त्र मिलते हैं, तब वो समझ सकता है कि उसका विगत जीवन क्या था और वर्तमान शरीर में क्यों है, और उसका भौतिक शरीर न प्राप्त करते हुए माया के पास से किस तरह मुक्त हुआ जा सकता है। तो जब व्यक्ति सतोगुण में आता है तो उसको ये सारा ज्ञान प्राप्त हो सकता है, और दूसरा भौतिक शरीर स्वीकार नहीं करता। जब उसको इतना समझ में आ जाता है, फिर वो पाप कार्य पूर्ण बंद कर देता है और दूसरा शरीर, भौतिक शरीर प्राप्त नहीं करता। ऐसा तभी संभव है जब वह सतोगुण को प्राप्त हो, किंतु सामान्यतः सारे जीव रजो तथा तमोगुण में उलझे रहते हैं। तो इस संसार में सारे जीव तमोगुण और रजोगुण में उलझे हुए हैं। जब शिला प्रभुपाद अमेरिका गए थे बोस्टन में, उन्होंने एक बड़ी सुंदर कविता की रचना की थी कि मैं इन तमोगुण वासियों को कैसे समझा पाऊंगा, हे कृष्ण आप बड़े चतुर योगी हो, आपकी कृपा से ही मेरे वाक शक्ति में आप शक्ति प्रदान करो, ताकि मेरी इस वाणी से वो ना समझ तमोगुणी व्यक्ति को समझ सके। आप अगर चाहें तो इनको मोह माया के पास से निकाल सकते हो, कृष्ण से प्रार्थना की थी। कितनी सुंदर प्रार्थना प्रभुपाद ने की थी, मेरे में कोई शक्ति नहीं, मैं आपकी शरण में हूं, आप अगर चाहें तो मेरी शक्ति को, मेरी वाक शक्ति को आप उसको शक्ति प्रदान करें। तो यहां शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि प्रत्येक दशा में मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अर्थात परमात्मा की इच्छा के अनुसार निम्न या श्रेष्ठ शरीर प्राप्त होता है, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है। इससे पिछला श्लोक कल आपने किया था, मन सेवा पुरे देवा पूर्व रूपम विपश्यति, अनुमीमांसते पूर्वम मनसा भगवान अजा। हर बात भगवान अथवा अजा अर्थात अजन्मा पर निर्भर करती है। अच्छा शरीर पाने के लिए कोई भगवान को क्यों नहीं प्रसन्न करता, प्रभुपाद कहते हैं। अच्छा शरीर प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति भगवान को प्रसन्न क्यों नहीं करता? उत्तर यह है अज्ञस्तमसा, निबट अज्ञान के कारण। जो पूर्ण अंधकार में रहता है वह नहीं जानता कि उसका विगत जीवन क्या था, उसका अगला जीवन क्या होगा। वह तो वर्तमान शरीर में ही रुचि लेता है। यद्यपि उसको मनुष्य का शरीर मिला रहता है, किंतु जो मनुष्य तमोगुण में रहता है वह पशु के समान है जो अपने वर्तमान शरीर में ही रुचि रखता है। क्योंकि एक पशु अज्ञान से प्रसन्न होने के कारण यह सोचता है कि जीवन का परम लक्ष्य तथा सुख यथासंभव भोजन करना है। तो पशु को नहीं मालूम कि उसका ये जो जीवन है क्यों है, अगर वो कुत्ता बना है तो क्यों बना है, पशु नहीं जानता। और जो मनुष्य भी नहीं जानता तो वो भी फिर पशु के समान है कि उसका ये जीवन क्यों है। मनुष्य को शिक्षा दी जानी चाहिए कि वे अपने विगत जीवन को समझे तथा यह समझे कि भविष्य में अच्छे जीवन के लिए किस तरह प्रयास करे। भृगु संहिता नामक एक ग्रंथ भी है जो मनुष्य के भूत वर्तमान तथा भविष्य जीवन को ज्योतिष गणनाओं के अनुसार बतलाता है। जैसे भी हो, मनुष्य को अपने भूत वर्तमान तथा भविष्य के विषय में प्रबुद्ध होना चाहिए। जो एकमात्र अपने वर्तमान शरीर में रुचि लेता है और जो अपनी इंद्रियों का जी भरकर भोग करना चाहता है वह तमोगुण में उलझा समझा जाता है। उसका भविष्य अत्यंत अंधकारमय होता है। निसंदेह जो अज्ञान से बुरी तरह प्रच्छन्न रहता है उसके लिए भविष्य सदा अंधकारमय रहता है। विशेषतः इस युग में मानव समाज तमोगुण से प्रच्छन्न है, इसीलिए हर व्यक्ति अपने तथा भूत तथा भविष्य पर विचार किए बिना वर्तमान शरीर को सब कुछ मानता है। तो यहाँ शिला प्रभुपाद का भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त होता है। तो इसमें दूसरे वाले जो इसमें पैराग्राफ में शिला प्रभुपाद ने गुणों के ऊपर काफ़ी जोर दिया है कि हमको जो भी शरीर प्राप्त होता है वो गुणों के संपर्क में आने के कारण प्राप्त होता है। अगर आप सतोगुणी हैं तो आपको सतोगुण के हिसाब से शरीर प्राप्त होगा। आप उच्च लोगों को जा सकते हो, उच्च लोगों को प्राप्त कर सकते हो आप। और अगर रजोगुणी हैं तो आपको यही मनुष्य जीवन दोबारा प्राप्त हो सकता है। और रजो और तमोगुण है साथ में तो आप नीचे की योनियों में जा सकते हो। तो स्थिति बड़ी भयानक है। इन गुणों के संपर्क में आने से हम बहुत ही खतरे भरा जीवन जी रहे हैं। अगर उस खतरे से हमको बाहर निकलना है तो उसके लिए हमारे को कहाँ जाना होगा? डॉक्टर के पास। अपने रोग को लेकर के कि मैं भवरोगी हूँ और मेरे रोग का आप इलाज कीजिए, तो फिर डॉक्टर आपका इलाज करेंगे, हमारा इलाज करेंगे और हमारे को क्या कहेंगे, हमारे को उसकी दवा देंगे। जब भगवान गौर सुंदर आए तो उन्होंने हमको कहा, क्या कहा? जीव जागो गौरा चांद बोले, जीव जागो गौरा चांद बोले, कत निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले, कत निद्रा पिशाचीर कोले, भुजीबो बलिया ऐसे संसार भितारे, संसार भितारे भूलिया रहिले तुमी अविद्यार भारे, तुमारा लईते आमी हैनो अवतारा आमी बेना बंधु आर के आछ तुम्हारा एने छी औषधि माया नाशिवार लागी हरि नाम महामंत्र लाओ तुम लागी लाओ तुम्हें मांगी भगति विनोद प्रभु चरणे पड़िया श्री हरि नाम मंत्र लैल मांगिया जीव जागो जीव जागो गोरा चांद बोले जीव जागो गोरा चांद बोले निद्रा जाओ माया पिशाची रकोले श्री गौर सुंदर कह रहे हैं क्या कह रहे हैं अरे जीव जागो जागो और कितनी देर तक माया रूपी पिशाची की गोद में सोएगा तू इस जगत में मैं भजन करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके आया था परंतु जगत में आकर माया में फंसकर तू सब कुछ भूल गया अतः तुझे लेने के लिए मैं स्वयं ही इस जगत में अवतरित हुआ हूं अब तू स्वयं विचार कर कि मेरे अतिरिक्त तेरा बंधु और कौन है और मैं माया का विनाश करने वाली औषधि हरि नाम महामंत्र लेकर आया हूं अतः तुम मुझसे वह महामंत्र मांग लो श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी श्रीमन महाप्रभु के श्री चरणों में गिरकर वह हरि नाम महामंत्र मांग लिया हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जाओ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ श्रीमद् भागवतम महापुराण की शिला प्रभुपाद की